नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन पर चर्चा कर रहे हैं। इसका शीर्षक है शांति कुंज एक श्रेष्ठ गायत्री तीर्थ
जी।
और इसमें जो मूल बात है वो ये कि किसी जगह का वातावरण और हमारी अपनी श्रद्धा, इनका आपस में क्या रिश्ता है, कैसे ये मिलकर काम करते हैं।
बिल्कुल। और पूज्य गुरुदेव ने इसे बड़े ही सरल रोजमर्रा के उदाहरणों से समझाया है। वो कहते हैं कि देखिए, कोई भी बड़ा काम ना अकेले नहीं होता, मतलब ना सिर्फ बाहरी मदद से, ना सिर्फ अपने पुरुषार्थ से।
अच्छा, जैसे?
जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा भोजन बनाया, एकदम बढ़िया, पर उसको पचाने का काम तो हमारे शरीर को ही करना पड़ेगा ना।
हाँ, वो तो है।
या फिर विवाह का उदाहरण ले, कोई बहुत अच्छी सुयोग्य स्त्री मिल जाए या पुरुष मिल जाए, लेकिन रिश्ता निभाने की मेहनत तो दोनों को करनी होगी।
सही बात है, यानी बाहरी अनुदान और अपना प्रयास, दोनों का संगम चाहिए।
बिल्कुल, दोनों का समन्वय।
तो शांति कुंज के संदर्भ में अगर देखें तो ये बाहरी मदद, ये अनुदान क्या है?
यहाँ पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शांति कुंज का जो सबसे खास, सबसे अनूठा अनुदान है वो है वहाँ का आध्यात्मिक वातावरण।
वातावरण?
हाँ, वो कहते हैं कि देखो, पूजा पाठ है, जप है, अनुष्ठान, स्वाध्याय, ये सब तो व्यक्ति शायद घर पर भी कर सकता है, लेकिन शांति कुंज में जो एक खास तरह की ऊर्जा है, एक माहौल है, वो कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। यही शांति कुंज का वो विशेष अनुदान है।
वातावरण का इतना महत्व, ये क्या सिर्फ मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही लागू होता है या आम जीवन में भी इसका प्रभाव दिखता है?
अरे, इसका असर तो हर जगह है। सोचिए ना, पूज्य गुरुदेव याद दिलाते हैं कैसे गुरु वशिष्ठ जी श्री राम को अयोध्या के राजसी माहौल से निकालकर हिमालय की शांत तपस्थली में ले गए थे,
देवप्रयाग।
हाँ हाँ, ताकि उन्हें वो योग वशिष्ठ जैसा गहरा ज्ञान दे सके। वो वातावरण का ही प्रभाव था। और प्राकृतिक उदाहरण भी हैं, जैसे मैसूर के चंदन की वो खास खुशबू या नागपुर के संतरे का स्वाद, ये सब उस जगह के वातावरण पे निर्भर करता है।
हाँ, ये तो है। बम्बईया केले का स्वाद भी अलग होता है।
बिल्कुल। या फिर देखिए, बंगाल के या सीमा प्रांत के लोगों की शारीरिक बनावट वातावरण का असर है। यहाँ तक कि सेनेटोरियम में स्वास्थ्य लाभ भी तो वातावरण के बदलाव से ही जुड़ा है। और नकारात्मक उदाहरण भी हैं, जैसे महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र जैसी विशेष भूमि का चुना जाना, या श्रवण कुमार वाली कहानी।
हाँ, वो कहानी कि मेरठ के पास आते ही उनके मन में नकारात्मक विचार आने लगे।
जी, मैं दानव की भूमि का संस्कार। तो वातावरण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से असर डालता है।
तो फिर ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि शांति कुंज का वातावरण इतना विशेष क्यों है, क्यों इतना शक्तिशाली माना जाता है।
इसके कई गहरे कारण हैं। एक तो है भौगोलिक स्थिति।
अच्छा।
ये हिमालय का प्रवेश द्वार है, पवित्र गंगा जी के तट पर है। पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि ये गंगा के बीच में ही बसा है। और सबसे बड़ी बात, ये सप्तऋषियों की तपस्थली रही है, खासकर ऋषि विश्वामित्र की,
जिन्होंने गायत्री मंत्र को प्रत्यक्ष किया।
जी हाँ, गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि।
और इस भौगोलिक स्थिति के अलावा क्या कुछ और भी है जो इसे खास बनाता है?
हाँ बिल्कुल, इसके साथ जुड़ती है यहाँ की प्रगाढ़ आध्यात्मिक ऊर्जा, जो हजारों वर्षों के ऋषि परंपरा की तपस्या से सिंचित है। फिर यहाँ निरंतर 24 लाख गायत्री मंत्रों के पुरस्करण चलते रहते हैं, सामूहिक जप
24 घंटे।
हाँ, निरंतर, साथ में नित्य हवन, यज्ञ, वो अखंड दीपक जो हमेशा जलता रहता है, चेतना का प्रतीक। और फिर स्वयं पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी की इतनी गहन तपश्चर्या, उनका सूक्ष्म संरक्षण जो आज भी अनुभव होता है। और गायत्री माँ का आलोक, ये सब मिलकर एक ऐसा, एक प्राणवान सानिध्य बनाते हैं, एक ऐसा स्पंदन जो साधक को सहज ही ऊपर उठाता है।
ये तो सच में अद्भुत है। मतलब एक तरह से शांति कुंज ने अपनी तरफ से सब कुछ तैयार कर दिया है, बाहरी मदद पूरी तरह से मौजूद है।
जी,
लेकिन यहाँ शायद वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, प्रयास वाला।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पूज्य गुरुदेव यहाँ बहुत स्पष्ट करते हैं, वो कहते हैं कि इस शक्तिशाली वातावरण का पूरा लाभ उठाने के लिए एक चीज अनिवार्य है।
और वो क्या है?
वो है व्यक्ति की अपनी श्रद्धा।
श्रद्धा?
हाँ, श्रद्धा। अगर व्यक्ति के मन में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो शांति कुंज भी उसके लिए बस कुछ इमारतें हो सकती हैं, एक जगह। श्रद्धा ही है जो किसी स्थान को तीर्थ बनाती है।
श्रद्धा में इतनी शक्ति,
क्या इसके भी कुछ उदाहरण गुरुदेव देते हैं?
अनेकों उदाहरण है। आप सोचिए, मीराबाई ने पत्थर की मूर्ति में ही अपने गिरधा गोपाल को जीवित देख लिया, उनकी श्रद्धा थी।
हाँ,
या एकलव्य को देखिए, मिट्टी के द्रोणाचार्य को गुरु मानकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया, वो श्रद्धा की ही तो शक्ति थी।
रामकृष्ण परमहंस जी ने पत्थर की काली मूर्ति को जीवंत कर दिया, उनसे बातें की। कबीर ने तो गुरु रामानंद के मुंह से निकले राम राम शब्द को ही दीक्षा मान लिया।
हाँ, अनजाने में ही मिली दीक्षा।
जी, श्रद्धा साधारण को असाधारण बना देती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि शांति कुंज एक तैयार अनुदान है, वातावरण बना हुआ है, लेकिन उसका लाभ लेने की जो चाबी है वो हमारी अपनी श्रद्धा है।
एकदम सही, बिल्कुल यही बात। पूज्य गुरुदेव का संदेश यही है। वो कहते हैं, हमने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया है,
यानी वातावरण बना दिया है।
हाँ, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक वातावरण निर्मित कर दिया है, अब आपके हिस्से का काम बाकी पड़ा है,
यानी हमारी श्रद्धा जगाने का काम।
बिल्कुल, अब व्यक्ति को अपनी श्रद्धा को जगाना है, उसे गहरा करना है। जब शांति कुंज का वातावरण और साधक की जीवन श्रद्धा, ये दोनों मिलते हैं, तभी साधना सही मायने में सफल होती है।
संक्षेप में कहें तो शांति कुंज एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। ऋषियों की तपस्या, गायत्री मंत्र की शक्ति, पूज्य गुरुदेव की चेतना, सब कुछ है वहाँ।
जी,
लेकिन इसका पूरा लाभ उठाने के लिए हमारी अपनी सच्ची गहरी श्रद्धा और लगन चाहिए। बाहरी कृपा और भीतरी पात्रता का संगम ही सफलता दिलाता है।
हाँ, और ये जानना भी महत्वपूर्ण है, जैसा पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये अंधश्रद्धा की बात नहीं है। वो कहते हैं कि आओ, परखो, अनुभव करो। तो अंतिम विचार शायद यही उठता है कि हम अपनी श्रद्धा को कैसे जगाएं, कैसे उसे इतना प्रगाढ़ करें कि वो हमें इस दिव्य वातावरण से जोड़ सके और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को गति दे सके। ये सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। ओम शांति ही।
शांति ही।